उन्होंने कहा जी कि ये टू स्टेट सॉल्यूशन है और इसको हम जो है वो बिल्कुल चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट हो और अलकुद्स जो है उसका कैपिटल हो। इस मौके पे बात करते हुए नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम पॉलिटिकल डिसीजंस जो हैं ना सिर्फ गाजा पे बल्कि इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर के ऊपर भी चलते हैं। आज एपीसी में बात करते हुए उन्होंने कहा जी पैलेस्टाइन के अंदर ये जो ब्रूटैलिटीज हैं उसके ऊपर मुझे नहीं समझ आ रहा कि दुनिया क्यों खामोश है और यूनाइटेड नेशंस जो है उसकी रेजोल्यूशंस भी फेल हो चुकी हैं इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर में लगाने के लिए। प्रेसिडेंट जरदारी ने भी सिमिलर बातें की, उन्होंने बहुत इसराइल के जो एट्रोसिटीज हैं उनको कंडेम किया और उन्होंने कहा जी कि तेल अवीव को फौरन मना करना चाहिए ये जो जिनोसाइड कर रहा है गाजा में। बीबी जरदारी जो है उन्होंने भी कहा कि तमाम पाकिस्तानी नेशन जो है ये इसराइली ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी हुई है और हमको एक डिप्लोमेटिक कैंपेन जो है बड़ी एक्सटेंसिवली चलाने की जरूरत है। एमक्यूएमपी जो है उन्होंने तो कहा कि जी पैलेस्टीनियन के जो बच्चे हैं उनको हमको एजुकेशन देना चाहिए और हमको हर तरह की उनको सपोर्ट देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नमीउर रहमान साहब ने कहा कि हम बिल्कुल टू स्टेट सोल्यूशन नहीं मानते हैं क्योंकि हम इसराइल की स्टेट को कंसिडर ही नहीं करते हैं, तो इसलिए ये जो है प्रपोजल ही गलत है कि देर इज टू स्टेट सोल्यूशन, देर इज नो टू स्टेट सोल्यूशन, पैलेस्टाइन बिलोंग्स टू पैलेस्टीनियंस। पाकिस्तान जो है इसके साथ साथ उसने अर्ज किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कि इमीडिएटली यहां पे सीज फायर की बात करें और जो भी वॉर क्राइम्स किए हैं इसराइल ने उसके लिए इसको खींचें, एज इफ दुनिया बड़ा सुन रही है और इसराइल बड़ी आपकी परवाह कर रहा है। अच्छा जनाब, जो अफगान फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसने बड़े गलत किस्म के लफ्ज इस्तेमाल किए पाकिस्तान के लिए, यानी कि जरा देखो जी जमाना की आ गया, अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के खिलाफ गल्ला करेगा, यानी मतलब है कि वाह जी वाह की उन इस वास्ते वर्ड यूज कर सकते हो। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर बड़े प्रॉब्लम्स हैं और पाकिस्तान के अंदर ये जो देख लें ऑपोजिशन के साथ क्या किया जा रहा है और वो मार्च करके इस्लामाबाद में आ रहे हैं और बड़े टेंशन्स बढ़ गए हैं गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के ऊपर। फॉरेन ऑफिस ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा जी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री को लेक्चर करने के बजाय आप अपने खुद के जो इश्यूज हैं उनको फिक्स करें। फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन मुमताज जारा बलोच जो हैं उन्होंने कहा जी कि आपके ये कॉमेंट्स फ्रिवलस हैं और अनएक्सेप्टेबल और डिप्लोरेबल हैं और आप इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर। आपको खुद चाहिए कि जो आपके मुल्क में औरतों और लड़कियों के राइट्स नहीं है टू एजुकेशन एंड अदर थिंग्स उसको आप दें और ये जो आपने लोगों के राइट्स कर्टेल किए हैं उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कर लें। आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में किसी को भी जो है वो स्पेस नहीं दे रहे हैं, आपने सिर्फ स्पेस टेरर ग्रुप्स को दी हुई है जिसकी वजह से सारे रीजन के अंदर जो है वो आपने थ्रेट्स और पीस और सिक्योरिटी को खराब किया हुआ है और थ्रेट्स फैलाए हुए हैं और जो नेबर्स हैं उनके साथ आप पीसफुली नहीं रह रहे हैं और आपका जो मुल्क है वो ग्लोबल टेररिज्म का सेंटर बना हुआ है उस पर करें। सपोर्टर्स ऑफ इमरान खान जो हैं जी आपको पता ही है कि वीकेंड के अंदर वो रैलीज लेकर जो थे इस्लामाबाद के डी चौक पे आना चाहते थे और वहां पे पुलिस ने उनके रास्ते रोके, उनके ऊपर जो है वो शेलिंग की, टियर गैस मारी और जो मोबाइल इंटरनेट था वो बिल्कुल बंद था पूरी तरह से। और पीटीआई के फिर उसके बाद पता चला जी कि पीटीआई ने कहा कि केपी के जो चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर जो कि ये सारी चीज को लीड कर रहे थे उनको अनलॉफुली अबडक्ट शायद किया गया है। थाउजेंड्स ऑफ जो प्रोटेस्टर्स थे वो इस्लामाबाद पिशावर हाईवे के ऊपर थे और पुलिस उनको मना कर रही थी शहर के अंदर एंटर होने के लिए। पीटीआई का इसके अलावा एक गैदरिंग जो था लाहौर के अंदर भी था, लाहौर की तमाम रोड जो थी उनको लॉकडाउन किया गया था। इमरान खान ने एक्स के ऊपर बात करते हुए कहा आई एम सो प्राउड ऑफ द पीपल जो कि आजादी के लिए खड़े हुए हैं और बड़े शांति से खड़े हुए हैं। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने प्रोटेस्टर्स को बड़ा एक्यूज किया, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने पुलिस के साथ लड़ाई की है, 80 पुलिस ऑफिसर्स इसके अंदर इंजर हुए हैं क्लैशेस के अंदर। पीटीआई के जो एक्टिविस्ट हैं वो इस्लामाबाद में जब आने शुरू हुए तो उनको जो है रोका गया, शिपिंग कंटेनर्स रास्ते में खड़े किए हुए थे। नकवी साहब ने कहा जी कि हमको इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि ये जो है एससीओ की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे और हम ऐसा करने नहीं देंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अलबत्ता कहा है कि ये जो कम्युनिकेशन कट्स, रोड ब्लॉकेड्स जो है ये लोगों की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है उसको इन्फ्रिंज करती है। पीसफुल असेंबली एंड मूवमेंट हर आजाद शहरी का हक है। इट इज वेरी वेरी वरिंग ट्रेंड इन पाकिस्तान। और इसके अलावा एक्स जो है उसको भी ब्लॉक किया गया था। हमने आपको फ्राइडे को भी बताया था कि जो इमरान खान हैं उनके जो लोग वहां पे जमा हो रहे हैं और उनकी जो इमरान खान साहब की जो बहनें थी उनको भी फिर पकड़ के ले गए थे और भी लोगों को। और ये जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी कि ये 80 पुलिस ऑफिसर जो हैं ये इंजर हुए हैं, अब हम यहां पे आपको दिखा नहीं सकते हैं वो तस्वीरें या वो वीडियोस जो कि हमें मुझे मिली हैं कल इस्लामाबाद से जिसमें कि गोलियां अलेजली चलाई हैं पुलिस ने और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं बड़े बुरे तरीके से। क्योंकि जाहिर है कि सेंसिटिविटी होती है और वो हम फुटेज नहीं दिखा सकते, लेकिन पुलिस ने जो कुछ किया दैट इज एब्सोल्युटली अनकॉल फॉर। अच्छा जनाब, ये जिस वक्त बात आई कि अली अमीन गंडापुर साहब गायब हो गए हैं, उसके बाद अचानक से केपी असेंबली का सुबह सॉरी रात को जब ये सेशन के लिए लोग जमा थे तो अचानक से अली अमीन गंडापुर साहब जनाब वहां पे हॉल के अंदर दाखिल हुए। जाहिर है जब हॉल में दाखिल हुए तो लोग तो इंतजार में ही बैठे थे, उन्होंने तालियां बजाई, इनका स्वागत किया। स्पीकर जो है बाबर सलीम स्वाती, उन्होंने जो है इनको फिर फ्लोर दिया, उन्होंने स्पीच उसमें की। जो गंडापुर साहब हैं उन्होंने एक्यूज किया आईजीपी इस्लामाबाद जो हैं कि उन्होंने केपी हाउस जो है उसको रेड किया, और जबकि उनके साथी और वो जो थे वहां पे थे तो ये जो है वायलेट करती है केपी हाउस की सैंक्टिटी। उन्होंने कहा जी ये ना सिर्फ इंसल्ट है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ केपी, बल्कि ये अटैक केपी के ऊपर डायरेक्ट है और ये आईजी इस्लामाबाद जो है इसको अपोलोजाइज करना चाहिए हमारे से। उन्होंने कहा जी इमरान खान की पार्टी, इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर है और उसकी पार्टी सबसे पॉपुलर पार्टी है, लेकिन जब तक आप उसको और उसकी पार्टी को हक नहीं देंगे गवर्नमेंट रन करने का, ये प्रिवेलिंग क्राइसिस जो है वो खत्म नहीं होगा। ये जो 9 मई का आपने ड्रामा किया था, इस ड्रामे को खत्म करें। उन्होंने कहा जी कि मुझे झुकाने के लिए बहुत कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मैं बिल्कुल झुकूंगा नहीं और ना ही मैं पीटीआई को झुकने दूंगा, तो मैं ऐसे खड़ा रहूंगा। फेडरल गवर्नमेंट जो है जी उसने 3 डे पब्लिक हॉलिडे का ऐलान किया है इस्लामाबाद रावलपिंडी में, अहेड ऑफ एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट मीटिंग नेक्स्ट वीक। पब्लिक हॉलिडे जो है वो ऑब्जर्व की जाएगी ट्विन सिटीज में ऑन अक्टूबर 14, 15 और 16 फॉर 23rd एससीओ मीटिंग्स। कैबिनेट डिवीजन ने अपनी प्रेस रिलीज में आज ये कहा है। सेवरल फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो यहां पे और हेड्स ऑफ द स्टेट यहां पे आएंगे। इंडिया की तरफ से बड़ी एक्साइटमेंट है इस दफा कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर साहब भी यहां पे आएंगे। फेडरल गवर्नमेंट ने इस मौके पे पाकिस्तान मिलिट्री को भी कहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्लान देने के लिए ट्रुप्स को डिप्लॉय किया जाएगा अंडर आर्टिकल 245 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम अक्टूबर 15 to 17। और इसके साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट ने तमाम मीटिंग्स इन एंड अराउंड अडियाला जेल जो है कैंसिल कर दिए हैं टिल अक्टूबर 18, जब सारे डेलीगेशन मुल्क छोड़ के जाएंगे। फॉरेन ऑफिस ने कहा है जी कि लास्ट नाइट का जो टेरर अटैक हुआ है कराची एयरपोर्ट के पास, जिसके के अंदर 2 चाइनीज लोगों की डेथ हुई है, वो बिल्कुल अनपनिश नहीं जाएंगे। लास्ट नाइट एक मैसिव एक्सप्लोजन जो था वो जो रोड थी नियर जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां पे हुआ था, जिसमें 3 लोगों की डेथ हुई थी और 11 जो है जख्मी है। पुलिस का कहना है कि एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस IED जो है वो इधर ब्लास्ट हुई है। यह एक्सप्लोजन उस वक्त हुआ जब एक व्हीकल जो है कोलाइड कर गया ऑयल टैंकर के साथ और बाकी के फिर बहुत सारी गाड़ियां जो थी उनके अंदर भी आग लग गई। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो था वो उस वक्त आया और उसने देखने की कोशिश की कि नेचर ऑफ ब्लास्ट क्या है। आउटलो लॉर्ड मजीद ब्रिगेड ऑफ बैंड आउटफिट जो है ये BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इन्होंने रिस्पांसिबिलिटी क्लेम की है इसकी। फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि ये इंतहाई हिनस टेररिस्ट अटैक है और सिक्योरिटी और लॉ एजेंसीज ने उनको कहा है कि आप दिन रात कोशिश करके ये जो परपेट्रेटर्स हैं और ये जो उनके फैसिलिटेटर्स हैं इनको आप पकड़ें। जाहिर है कि ये पूरी कोशिश है कि चाइना के साथ भी पाकिस्तान के हालात खराब हो जाएं और पाकिस्तान बिल्कुल ही स्टोन एज में चला जाए, क्योंकि कोई भी इसके साथ खड़ा ना रह जाए तो ये करेंगे। लेकिन बहरहाल जाहिर है जी गलतियां तो आपकी अपनी खुद की ही हैं। ओवर 50 पाकिस्तानी प्रिजनर्स जो हैं उनको श्रीलंका ने जी रिपैट्रिएट किया है और वो जेल में थे बड़े अरसे से, सालों से जेल में थे। उनको आज 50 पाकिस्तानी प्रिजनर्स को श्रीलंका ने आज पाकिस्तान में भेजा है और ये बड़ी सक्सेस समझी जा रही है इंटीरियर मिनिस्ट्री की। पिछले 3 महीने से कोऑर्डिनेशन चल रही थी श्रीलंकन अथॉरिटीज और मोहसिन नकवी साहब के बीच में, और एक चार्टर्ड प्लेन जो है पाकिस्तान का वो 5 औरतें और 51 मैन जो हैं उनको लेकर आए। यानी कि ये जो 50 ये जो लोग थे इसके में तो मर्द जो थे ही थे, औरतें इसके अलावा थी, तो 5 औरतें जो थी ये भी आई हैं। इन सब लोगों ने जो है गवर्नमेंट का बड़ा शुक्रिया अदा किया और नकवी साहब ने भी श्रीलंकन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा उन्होंने थैंक यू बोला फेडरल मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन अब्दुल अलीम खान साहब ने, जिसके बारे में उन्होंने कहा जी कि अलीम खान साहब ने अपनी जेब से पैसे देकर इन सब लोगों का रिपैट्रिएशन करवाया है और इनको मुल्क में लेकर आए हैं। हिंदुस्तान में आज जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उनसे बहुत सारे सवाल किए गए कि आप जो एससीओ की मीटिंग के लिए यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग के लिए पाकिस्तान में जा रहे हैं इस्लामाबाद, तो उसमें क्या आपके और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल जो है वो टाइज की बात भी होगी, कोई मल्टीलैटरल जो आपकी कोई जो है वो मीटिंग्स होंगी कि नहीं होंगी। इसके ऊपर जयशंकर साहब ने बात करते हुए कहा कि नहीं जी, हम तो वहां पे, मैं तो जो है वो जा रहा हूं जस्ट एज अ गुड मेंबर ऑफ एससीओ। आप लोगों को तो पता ही है, अपनी तारीफ उन्होंने खुद की, जैसे आमिर अपनी तारीफ करता है ना, खूबसूरत आदमी, वैसे उन्होंने भी आज अपनी तारीफ की। उन्होंने कहा आपको तो पता ही है मैं बहुत ही कर्टियस आदमी हूं, मैं बहुत ही सिविल किस्म का आदमी हूं, तो मैं वहां जाके बहुत अच्छे से बिहेव करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एससीओ की मीटिंग करूंगा, मैं पाकिस्तानी जो लीडरशिप है उसके साथ कोई डिस्कशन नहीं करूंगा। आज असल में ये मीडिया के साथ बात कर रहे थे आफ्टर डिलीवरिंग अ लेक्चर ऑन गवर्नेंस इन डेली, और उसके ऊपर जो है फिर इसके साथ साथ जिस वक्त ये बात कर रहे थे तो इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, वो भी एक स्टेटमेंट जो है पाकिस्तान के खिलाफ दे रहे थे। उन्होंने कहा जी कि ये जो इस्लामिक क्लैरिक है जाकिर नायक साहब, ये वॉन्टेड मैन है इंडिया में और इसको बड़ा वार्म वेलकम जो है पाकिस्तान में दिया है, ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग और कंडेमेबल बात है, लेकिन ये तो एक इंडियन फ्यूजिटिव है, लेकिन पाकिस्तान में इसको जो इतना हाई लेवल वेलकम क्यों दिया गया है, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान ऐसी हरकतें करता ही रहता है और हम कोई सरप्राइज नहीं है इसके ऊपर, तो ये बात है। तो भाईजान तुसी फिर मतलब पकड़ के रख लो अपने बंदे नू, है जी तुसी क्यों खुला छोड़िया होया है, फ्यूजिटिव है तो तुसी फड़ लो उसनू, हुण साडे मुल्क विच ते जो भी आएगा असी ते फिर जाहिर की करिए, वटे मारिए किसी बंदे नू, पाकिस्तान कोई आ गया पत्थर मारे उसको, अब वो आया है अब क्या करेंगे हम, हेड्स ऑफ द स्टेट आते हैं, दूसरे लोग आते हैं तो हम वेलकम ही करते हैं ना भाई, तो आपका वांटेड आदमी है, आप तो कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, आप तो अपने आपका तो फुटप्रिंट रॉ का हर जगह पे बड़ा हुआ है, आप तो हर जगह अपने बंदे लेजली भेज भेज के उनको लोगों को जो है उनके ऊपर अटैक्स कर रहे हो, तो आपने जाकिर नायक को क्यों नहीं अभी तक पकड़ा, आप उसको पकड़ लेते, आप उसको पकड़ के पाकिस्तान ले आओ, पाकिस्तान से ले आओ या जहां पे भी दुनिया में उसको ले आओ पे हिंदुस्तान और उसको सजा दे दो आप, मतलब हर चीज का बलून आ गया पाकिस्तान से तो पाकिस्तान का कसूर है, हवा उड़ के आ गई है पाकिस्तान का कसूर है, मक्खी आ गई है, कबूतर आ गया है, पतंग आ गई है, सब पाकिस्तान का कसूर है, आपका तो कोई कसूर है ही नहीं, है ना, क्योंकि आपकी तरफ तो हवा चलती नहीं है, हवा सिर्फ पाकिस्तान से इंडिया चलती है, इंडिया से पाकिस्तान नहीं चलती, तो वो जब आप स्टबल जलाते हैं अपना सारा उधर पंजाब में तो फिर वो कौन सी हवा होती है जो कि वो सारे का सारा आपका पंजाब का गंध लाहौर लेके आ जाती है और लोग बेचारे खांसते रहते हैं और उनकी जो है वो सांसें खराब हो जाती हैं, सारा वो कार्बन जला हुआ उड़ उड़ के जो लाहौर में आता है, फिर अब वो फिर आप फिर पाकिस्तान को कहना चाहिए आप वो टेररिज्म कर रहे हो, टेररिज्म ही है ना, पाकिस्तान के लोगों की सेहत खराब कर रहे हो आप, तो हर चीज का जो है वो ब्लेम पाकिस्तान पे है ना, खुद भी कोई पयान कोई कम कर लो, ए बिला वजह गुरपतवंत सिंह पन्नू वगैरह नू तुसी ए इत्थे सतवें महल्ले जिहड़ा मारन वास्ते अलैजली बंदे भेजे हुए तो तुसी पाकिस्तान ते तुहाडे नाल ही है ना, फड़ लो फिर जाकिर नायक नू लै आओ, एडी केड़ी वड्डी गल है तुहाडे वास्ते, केड़ी एडी वड्डी गल है ना जी, ठीक है। अच्छा जनाब, हरियाणा और इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर के अंदर जो है वो आपको पता ही है कि अब इलेक्शंस हो चुके हैं और कल ट्यूसडे के दिन यहां पे जो है वो रिजल्ट्स जो हैं वो यानी कि वोटिंग की काउंटिंग होगी, लेकिन जो एग्जिट पोल्स इस वक्त तक इंडिया के अंदर आए हैं उसमें लग रहा है कि कांग्रेस स्वीप करेगी हरियाणा के अंदर और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो अलायंस बनाएगी इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अकॉर्डिंग टू एग्जिट पोल्स जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस के पास 35 से 50 सीट्स आ सकती हैं, पीडीपी के पास 4 से 12 सीट्स, बीजेपी के पास 20 से 32 सीट्स जो हैं वो आ सकती हैं। वैसे तो ये प्रिडिक्शंस जो होते हैं एग्जिट पोल के ये हर दफा सच नहीं होते हैं, लेकिन अगर इसको सच समझा जाए तो जैसे कि देखा गया था कि अभी जो 2024 के लोकसभा के जो इलेक्शन हुए थे उसमें काफी भारी तादाद में बीजेपी की शिकस्त हुई थी और ये जो है इसी तरह जो है अगर ये भी आंकड़े ठीक रहे तो फिर लग रहा है कि बीजेपी की नैया जो है वो पार नहीं है, डूबती हुई नजर आ रही है। एक जो सिंगल फेज की पोलिंग हुई थी 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए हरियाणा में वो बहुत ही पीसफुली खत्म हुई और तकरीबन 20,000 पोलिंग स्टेशन जो थे वो थे बनाए गए थे और 65.65% जो है यहां पे वोटिंग टर्न आउट रहा। इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शंस के अंदर जो कि एक जो है वो डेकेड के बाद 10 साल के बाद तकरीबन हुए, 3 फेजेस में यहां पे इलेक्शंस हुए थे, सितंबर 18, सितंबर 25 और 1 अक्टूबर को, तो वो भी जो है अब खत्म हो गए हैं। जैसे कि हमने बताया कि कल जो है रिजल्ट्स आ जाएंगे, अगर ये देखा गया और अगर जो एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि शायद बीजेपी हारे तो उस हिसाब से फिर इसका असर जो है महाराष्ट्र के जो इलेक्शंस हैं उसके ऊपर भी पड़ेगा और दिल्ली के ऊपर भी डेफिनेटली इसका जो है असर पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन जो है उसने अभी तक महाराष्ट्र असेंबली के जो टर्म खत्म होने वाली है नवंबर 26 को उसका अभी तक डेट्स नहीं दिए हैं इलेक्शंस के, लेकिन जब वो देंगे तो फिर उसके बाद जो है पता चलेगा कि कितने लोग इन्होंने फील्ड किए हैं बीजेपी ने और बाकी पार्टियों ने। इन 2019 बीजेपी जो थी उसने 105 आउट ऑफ 165 सीट्स ली थी महाराष्ट्र में, और उन्होंने जो उस वक्त की पूरी कंप्लीट शिवसेना थी उसके साथ अलायंस में गवर्नमेंट फॉर्म की थी। इन 2024 जनरल इलेक्शंस बीजेपी सिर्फ 28 लोकसभा सीट्स में से 9 सीटें जीत सकी थी। तो ये जो हैं जिन्हें अच्छे वो नहीं है, जरा बुरे मड़े मड़े आंकड़े हैं ये। सिंघम अगेन जो है जी उसका आज ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया है और उसमें दीपिका पाडुकोन जो है वो देखी जा रही हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी हर फर्स्ट फिल्म आफ्टर बिकमिंग अ मदर। और इस फिल्म के अंदर बड़े बड़े सितारे नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि ये रामायण की तरह की ट्रेजेक्ट्री इसके अंदर रहेगी। इसमें अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, करीना कपूर, टाइगर श्रॉफ वगैरह नजर आएंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं जी कि जो ट्रेलर आया है इसमें इंतहाई पथेटिक और स्टीरियोटाइप टाइप का कैरेक्टर और लुक जो है दीपिका की लग रही है। उन्होंने कहा जी कि ये चेन्नई एक्सप्रेस को बने हुए 11 साल हो गए हैं, उस वक्त भी इसकी डायलॉग डिलीवरी इंतहाई बुरी थी। लोगों का कहना है शी लुक्स लाइक हैविंग अ क्रिंज टाइम, क्रिंज एक्टिंग, वर्स्ट कैरेक्टर, वर्स्ट एक्टर, वर्स्ट डायलॉग डिलीवरी जो है। तो लोगों को ये ट्रेलर में बहुत ही खराब लग रही है, पता नहीं क्यों। वो कह रहे हैं कि इंतहाई इनके वियर्ड जो है वो फेशियल एक्सप्रेशन है, एक्सेंट इंतहाई खराब है, और वो कह रहे हैं जी कि ये लग रहा है कि जैसे दीपिका पाडुकोन चेन्नई एक्सप्रेस में से जंप करके एक पुलिस फोर्स के अंदर आ गई हैं। सो इट्स अ कंप्लीट क्रिंज फेस्ट फॉर हर। तो बहुत ही आज तो जनाब या अच्छा जनाब शायद कुछ मोहब्बत के कुछ कोई गीत शायद गा ले, उसकी वजह यह है कि एक रोम कॉम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बन रहा है जिसमें के आमिर की फेवरेट वानी कपूर नजर आएंगी हमारे शहजादे फवाद खान के साथ। ये आज ऑफिशियली अनाउंस किया है इन्होंने और उसकी फिल्म की फर्स्ट लुक जो उन्होंने दी है, इसका फिल्म का नाम है अबीर गुलाल। और ये जो है फवाद खान का कम बैक भी बॉलीवुड में माना जा रहा है। इसकी शूटिंग ऑलरेडी लंदन में शुरू हो गई है। अगर जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो देख सकते हैं जो इसका फर्स्ट लुक आया है उसके अंदर ये दोनों जो हैं ग्रास के ऊपर लेटे हुए हैं और जो फवाद है वो आसमान की तरफ देख रहा है, वानी जो है वो उसकी एम्ब्रेस में है। ये फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं आरती बागडी और इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडियन स्टोरीज रिचर्ड लेंस और जे पिक्चर्स वाले मिलके। ये इसकी जो शूटिंग है अक्टूबर नवंबर में जारी रहेगी लंदन में। और इसके ऊपर बात करते हुए आरती जो है उन्होंने कहा है कि ये दो बिल्कुल अजनबी हैं जो कि कुछ एक जर्नी के ऊपर हैं और अनइंटेंशनली एक दूसरे की हेल्प करते हैं और उस हेल्प में फिर इनके बीच में प्यार हो जाता है। प्यार तो होना ही था है जी, ऐसे है। करण जौहर साहब जो है आजकल जिगरा की जो है वो प्रमोशंस को देख रहे हैं, बल्कि रिलीज को देख रहे हैं ना, प्रमोशंस रिलीज को देख रहे हैं। जिगरा के अंदर नजर आएंगी आलिया भट्ट और विद्यांक रायना और ये फिल्म जो है थिएटर्स में आने वाली है शायद अक्टूबर 11 को। इसके ऊपर आज बात करते हुए लोगों ने आज पूछा करण जौहर साहब से कि आप प्री रिलीज स्क्रीनिंग्स क्यों नहीं फिल्म की कर रहे हैं। तो उसका उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा जी कि ओवर द इयर्स मीडिया जो है उसने हमारा बड़ा साथ दिया, बड़ा प्यार दिया, हमको कवरेज दी, रिव्यू दिए, फीडबैक्स दिए, लेकिन अब जैसे जैसे हम ये आगे जाते जा रहे हैं और इवॉल्व कर रहे हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि हम प्री रिलीज स्क्रीनिंग्स करें। ये बड़ा डिफिकल्ट फैसला है लेकिन ये है। मोहम्मद हारिस जो है जी वो लीड करेंगे पाकिस्तान शाहीन्स को इन एशियन क्रिकेट काउंसिल मेंस T20 इमर्जिंग टीम्स एशिया कप के लिए और इनका पहला मैच जो है इंडिया के खिलाफ होएगा ऑन अक्टूबर 19। इससे पहले जो है ये हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची के अंदर जो है वो प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम अक्टूबर 11 से 15 और उसके बाद जो है ये ओमान के लिए अक्टूबर 16 को चले जाएंगे क्योंकि मैचेस अक्टूबर 18 से जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। इनका जो दूसरा मैच होएगा वो होएगा इनके साथ ओमान के साथ जो दूसरा मैच है वो अक्टूबर 21 को है और यूएई के साथ जो है अक्टूबर 23 को है। ये बी ग्रुप के अंदर है विद इंडिया ए, ओमान एंड यूएई। ग्रुप ए के अंदर अफगानिस्तान ए, बांग्लादेश ए, हांगकांग, श्रीलंका ए जो है वो हैं। ऑन द ओपनिंग डे, आज जो था फर्स्ट इनिंग्स नहीं थी, ओपनिंग डे थी, ओपनिंग डे ऑफ द टेस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंग्लैंड था, जिसके के अंदर पाकिस्तान ने 328 फॉर 4 बनाया एट मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम। शान मसूद जो है ही रियली लेड फ्रॉम द फ्रंट, और क्योंकि जो ओपनिंग थी बैड थी, साइम अयूब जो थे वो 4 रन के ऊपर आउट हो गए थे, कॉट बिहाइंड विकेट ऑन गस एटकिंसन की बॉल के ऊपर। उसके बाद फिर अब्दुल्ला शफीक और इसने मिलकर 114 रन का स्टैंड दिया और 122 फॉर 1 लेट लंच किया साउथ शकील ने जो थे फिर, और उसके बाद जब ये आउट हो गए अब्दुल्ला तो फिर उन्होंने नसीम के साथ आगे चीजें बढ़ाई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नसीम शाह ने कोई भी रन अभी तक नहीं बुलाए हुए थे। और जो मसूद हैं उन्होंने बनाए हैं 151 ऑफ 177 बॉल्स। बाबर आजम आज भी सिर्फ 30 रन बना सके ऑफ 71 बॉल्स। क्रिस वोक्स जो है उन्होंने उनको डिसमिस किया था, उन्होंने एक विकेट ली और एटकिंसन ने 2। अब कल का मैच जो है फिर वहीं से आज शुरू करेंगे। इंडिया जो है, इंडिया की जी विमेन्स टीम ने आईसीसी विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हो रहा है, उसमें पाकिस्तान को कल जो संडे को मैच था उसमें हराया। पाकिस्तान ने सिर्फ 105 रन बनाए थे फॉर 8 विकेट्स। ये 106 का जो मीगर सा मॉडेस्ट टारगेट था इंडिया ने 18.5 ओवर्स में किया। शिफाली वर्मा जो थी टॉप स्कोरर थी विथ 32 ऑफ 35 बॉल्स। पाकिस्तान की स्किपर फातिमा सना ने 2 for 23 रन लिए, यानी कि 2 विकेट्स लें। और जनाब होम टाउन फेवरेट्स क्रिस बाउचर जो हैं वो स्पॉटलाइट में आ गए हैं इन मॉन्ट्रियल। उन्होंने प्रोड्यूस किए 13.6 रीबाउंड्स ऑफ बेंच एज टोरंटो रैप्टर्स जो हैं उन्होंने हराया वॉशिंगटन विजिट्स को 125-98 के लिए एट प्री सीजन ओपनर एट बेल सेंटर यस्टरडे। एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज ड्यूरिंग लॉस एंजल्स लेकर्स प्री सीजन गेम अगेंस्ट फीनिक्स सन्स, लेब्रॉन जेम्स और उनका बेटा जो है ब्रॉनी जेम्स, उन्होंने बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की। दे बिकेम द फर्स्ट फादर सन ड्यूओ टू प्ले टुगेदर ऑन एनबीए टीम। और ये जो है सेकेंड क्वार्टर में जब आए एट एरिकशॉर एरेना इन पाम डेजर्ट कैलिफोर्निया, ब्रॉनी जो है कल ही अभी 20 साल का हुआ था तो लोगों ने उसको बड़ा चीयर किया और उसने 4 मिनट तक अपने फादर के साथ खेला। और फादर भी बड़ा यंग है, लेब्रॉन जेम्स इज जस्ट अबाउट 39 ईयर्स ओल्ड। आई डिडंट नो, मुझे लगता था 45-50 का कुछ है। तो जनाब बड़ी इन्होंने बाप बेटे ने हिस्ट्री की क्रिएट।
ये थी जनाब गर्मा गर्म और खट्टी मीठी आज की खबरें। और शरद जी अब इजाजत लेने का टाइम आ गया।
थैंक यू,
बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ शामिल होने का। इंशाल्लाह जिंदगी रही और आप जिंदा रहें तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तमाम सामईन का बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने का, तमाम नाजरीन का बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने का। अब जो है दुआ का सेगमेंट है, उसके बाद फिर हम अख्ताम की तरफ चलेंगे। पूरी मैनेजमेंट की तरफ से अरवा मुजफ्फर साहबा की तरफ से, माजिद जमाल साहब की तरफ से, हमारे इंजीनियर जिशान अहमद की तरफ से, मैं आपका होस्ट आमिर अहमद अब जो है वो इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही और सेहत रही तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।
سزا ان پہ سایہ تیرا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں یہ غازی یہ تیرے مجاہد سپاہی یہ دیتے تیرے کرم کی گواہی میں پانی تیرے نور کی میں ضیا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں
کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں
الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا بلاؤں سے ہم کو صدا دور رکھنا پریشانیاں ہم کو گھیرے بنا مانگتا ہوں
کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں
الہی تجھے واسطہ پنج تن کا دامن ہمارا مرادوں سے بھر دے کرم کی نظر دے عطا مانگتا ہوں
کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں
کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں
آمین
WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world. in words and in music.
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM। हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288। इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशियात के लिए विजिट कीजिए eawaz.com। लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप। Radio 770 AM, Voice of Community. For more details, visit eawaz.com.
फिर कब मिलोगे
जब तुम कहोगे
जुम्मे रात को
हाँ हाँ आधी रात को
कहाँ
वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं अच्छा तो हम चल
तो नहीं तुम्हें आते
नहीं मैं आई हूँ छुपते छुपाते
देर करती बड़ी जरा देखो तो घड़ी मुझे पसंद है।
देखो बातें बातें कर लो जल्दी जल्दी, फिर ना कहना भी आई अभी जल्दी।
तो आओ पास बैठे पल दो पल,
आज नहीं कल।
क्यों क्यों
आज नहीं कल,
ये तो एक बहाना है,
वापस घर भी जाना है।
कितनी जल्दी दिन ढलते हैं, हाय
दादा। अच्छा तो हम चलते हैं,
फिर कब मिलोगे?
जब तुम कहोगे।
कल मिलो या परसों?
परसों नहीं, नरसों।
कहाँ?
यही, यहाँ कोई आता जाता
प्यार साथी नहीं। के जहर कोई पिए जाए, शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। तेरी कसम मेरे होठ सिए जाए, शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। तस्वीर जैसे कोई तेरी नजर बन के जुबान, लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए, शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे तो कोई खींचे तेरी ओर दिए जा, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा।
लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे शर्माई, कोई खुशबू कहीं बिखरी लगा ये जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। जो खत तुझे फिजा रंगी अदा रंगी ये इठलाना, ये शर्माना, ये अंगड़ा
कर चले जाना, बना देगा नहीं किसको जवां जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है, मुसाफिर मैं तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है, मेरी दुनिया ये नजरे है, मेरी जन्नत ये दामन है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे
इसलिए तू इतना उदास खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चलाता, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चलाता, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। रहे कोई सौ फर्जों में डरे शर्म से, नजर खजीला चुराए कोई सनम से, रहे कोई सौ फर्जों में डरे शर्म से, नजर खजीला चुराए कोई सनम से, आ ही जाता है जिसके दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब, सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब, छलक जाता है जो पैमाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है।
बस एक छांव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छांव ज़ुल्फ़ की, बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं। शौखिया सलाम की यही तो बात हो रही है काम की, कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छांव ज़ुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं। तो किस यकीन से घटा उतर के आ गई जमीन पे, रही यही लगन तो ऐ दिले जवान, असर भी हो रहे गए एक हसीन पे, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छांव ज़ुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं।
जापान की ले गई दिल गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया, ले गई दिल गुड़िया जापान की, ले गई दिल गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया।